Upshaw 519-622-0660 or quicktrucklube.com. QTL, because we care. Quick Truck
Lube. MP Shafkat Ali, bringing community together at Community Barbecue at Chinkozi Park, Brampton on Saturday 24th of August, noon to 3 p.m. With your MP Shafkat Ali. Enjoy free food, exciting performances, kids activities, face painting and lots of giveaways. Community Barbecue with MP Shafkat Ali at Chinkozi Park, Brampton. For further information, contact 905-790-9211.
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है,
मेरी सेविंग $350,
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियां और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा 6472903773 6472903773।
टीम फोर एंटरटेनमेंट अते ट्रांस 99 लॉजिस्टिक्स पेश कर देने पंजाबी विरसा 2024 टोरंटो शो सैटरडे 7 सितंबर नू द थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन कैसीनो रिजोर्ट टोरंटो वुडवाइन मॉल अते वुडवाइन रेस ट्रैक ते बिल्कुल नाल मनमोहन वारिस कमल हीर अते संतार टिकटा लई ticketmaster.ca ते जाओ वधेरे जानकारी लई कॉल करो टीम फोर एंटरटेनमेंट 905-793-1234।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
पाकिस्तान पैसे भेजना अब हुआ आसान, यूज लेम्फाई फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। कनाडा से पाकिस्तान पैसे मिनटों में पहुंचते हैं बराह रास्त, जिसको आप भेजना चाहें, बेहतरीन एक्सचेंज रेट और पैसे पहुंचे मिनटों में। डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले और एप्पल स्टोर, कोड पाकिस्तान इस्तेमाल करने पे आपको मिले $10 का कैश बैक। अपने फोन से बराह रास्त बैंक अकाउंट में पैसे भेजना शुरू करें मिनटों में और बिना किसी फीस के। लेम्फाई
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
چاندنی
بینکویٹ ہال
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز Sound System Innovations Chandni Banquet Hall
30 years of hospitality experience corporate event exhibition expo or any celebration
sare package ka naam Chandni Banquet Hall aaj hi call kijiye 437-218-8734 chandnihalls.ca Chandni
यूं ही चला चल रही प्लानिंग फॉर वेकेशन
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल होलसेल रेट पाकिस्तान इंडिया और मिडल ईस्ट एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस अफोर्डेबल इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स
Airwing Travel and Tours
416-502-8000 दांतों का कोई भी मसला हो या करानी हो डेंटल क्लीनिंग, डॉक्टर फयाज एंड एसोसिएट्स आपकी पहली चॉइस। पैराडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, डेंटल इम्प्लांट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड मच मोर। वार्म एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जहां आप अपनी जबान में अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं। आपके पास डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं, कोई मसला नहीं। स्कारब्रो में एक और मिसिसागा की दो लोकेशंस पर आपको सर्व करते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल कीजिए 9052325678 मिसिसागा 4167579999 स्कारब्रो।
क्या आपकी फैमिली में मसाइल चल रहे हैं और हालात आपको लेके जा रहे हैं डाइवोर्स की जानिब, या आपका प्यारा बिना विल लिखे या विल लिखकर आपको छोड़ के जा चुका है? विल के मुतालिक कोई भी काम हो या आपको चाहिए ट्रस्टीशिप सर्टिफिकेट, या आपकी रियल स्टेट क्लोजिंग नजदीक है और आप हैं एक तजर्बेकार लॉयर की तलाश में, इन तमाम कामों के लिए आपकी मदद के लिए एक बाएतमाद इदारा मलिक लॉ ऑफिस, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स मोहम्मद अतीक मलिक आपकी तमाम कानूनी मसाइल में आपकी रहनुमाई करेंगे। GTA में दो लोकेशंस, मिसिसागा 168 क्वीन स्ट्रीट साउथ यूनिट 201, इन स्कारब्रो 1825 मार्कम रोड यूनिट 205। कॉल टुडे मलिक लॉ ऑफिस 9052914455 9052914455।
खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4165700157।
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल, कमर्शियल मॉर्गेज, रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके। आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1000 महीना। कैसे बचा सकते हैं? कॉल हैरी सॉन नाउ 6472281000 हैरी सॉन ऑफ मेजेस्टिक मॉर्गेजेस।
B&K proudly brings you Big Pigwin Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street, West Midway. Mark your calendars for August 31st and September 1st. Day one will feature the incredible and legendary Marvin concert with full band. Enjoy free parking at admission. For sponsorship, booth booking, and limited VIP tickets, contact us at 416-897-1683 or info@bnkevents.com.
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही, बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन। पायल उसके असलम भाई को कॉल करें ना एट 9057907879, दैट इज 9057907879।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले तो खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। ऑफकोर्स टोरंटो में जो एक्सपेंशन हो रही है मेट्रो लिंक्स की, उसके हवाले से अभी पता चला है कि 25 होम जो पेप एवेन्यू के पास है, मुंह मांगे दाम देंगे, 25 होम पेप एवेन्यू के ऊपर रिवर डेल ऑन्टेरियो लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए मेट्रो लिंक्स में ज़ाहिर है गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। कहते हैं दो दर्जन से ज्यादा रेंटर्स और होम ऑनर्स जो ईस्ट साइड पेप एवेन्यू और रिवरडेल, रिसेंटली उन्हें पता चला है कि उनको अपने घरों को छोड़ना होगा।
यहाँ से मैं आपके साथ एक और भी शेयर करना चाहती हूँ, हम वीडियो शेयर करेंगे। ये पुलिस सर्च कर रही है तीन मर्दों के लिए, ये अटेम्प्ट ये एक जिसमें बच्चा 10 साल का एक गाड़ी को एजेक्स के इलाके में, और यहीं पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज ही रिचमंड हिल के इलाके में एक नौजवान की डेथ हुई है, और वो कहते हैं कि यूथ डाइज ऑफ इंजरीज आफ्टर रिचमंड हिल क्रैश दैट इंजर्ड 7, 7 लोग जख्मी हुए हैं, एक नौजवान की डेथ हुई है। लेकिन इस खबर की तफसील की तरफ भी हम बाद में जाएंगे। आज जब मैं न्यूज को कवर करती हूँ तो हम पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज भी कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ अभी भी, जो मुझे पाकिस्तान में रुपए की कीमत को गिरते हुए आपने देखा, और पाकिस्तान में रुपए थोड़ा सा स्टेबल हुए। आज भी मेगा मनी एक्सचेंज रकम पाकिस्तान भिजवाने के लिए काबिल एतमाद जरिया है, आप पाकिस्तान रकम भेज भी सकते हैं, वापस भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाजार में वैसे डॉलर मिल नहीं रहा, मगर आप मेगा मनी एक्सचेंज से राबता कीजिएगा, फास्ट फ्रेंडली सर्विस, अफोर्डेबल प्राइस, क्विक ट्रांसफर ऑफ फंड्स, पाकिस्तान पैसे भेजिए, पाकिस्तान से पैसे मंगवाइए। मिस्टर एंड मिसेस शबाहत 9052794754। आज डॉलर का रेट 207 रुपए है। साहब ये जो हमारा वेस्ट एशिया है, इसकी जो बदलती सूरत हाल है, बल्कि दुनिया की जो बदलती सूरत हाल है, और आपने कल परसों की रिपोर्ट देखी थी अमेरिका के रिसेशन के हवाले से, अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ऑफकोर्स नवंबर में उनका इलेक्शन भी है, एंड आजकल एक इजलास भी चल रहा है जिसमें डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपना मिशेल ओबामा और प्रेसिडेंट ओबामा, एक्स प्रेसिडेंट ओबामा, वो भी बिल्कुल बाहर आ गए हैं जस्ट कमला हैरिस को सपोर्ट करने के लिए। इंडिया भी इस दुनिया की सूरत हाल से किसी तरह भी निकल नहीं पा रहा। आपको पता ही होगा कि एक इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है, जो कि हम रेसिस्ट स्पीचेस या रेसिस्ट जब बात करते हैं, कहते हैं कि जो भी रिसेंट इलेक्शन हुआ है उनमें तकरीबन 172 के करीब नरेंद्र मोदी साहब की स्पीचेज हैं जिनको एनालाइज किया गया, 110 स्पीचेज, 110 स्पीचेज ऐसी हैं जो रेसिस्ट पाई गई है, 110 स्पीचेज उनकी रेसिस्ट पाई गई हैं। लेट्स सी, मगर जहां बाकी चीजें हैं इकोनॉमी के लिहाज से भी इंडिया भी सफर कर रहा है, पाकिस्तान बहुत सफर कर रहा है, मत समझिएगा कि मैं कोई कंपैरिजन कर रही हूं, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन बोथ। इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है 4% ओवरऑल दिखा रहे हैं, जबकि अगर खुराक का ही जिक्र करें तो 5% के करीब इन्फ्लेशन रेट आ रहा है। जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी कीमतें बहुत महंगी हैं, और इंडिया अपने इन्फ्लेशन के लिए इस वक्त फाइट भी कर रहा है, और मुझे यकीन है कि वहां के लोग यकीनन एक्शन लेंगे। हिंदुस्तान की अगर खबर करना कवर करना चाहूं तो वेस्ट एशिया की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसके हवाले से आज, बल्कि नरेंद्र मोदी साहब की यूक्रेन की विजिट का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान अमन बहाल किया जाएगा, मगर बड़ी मखदूश सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि जर्मनी ने अपनी कोई बेस जो है आजकल उसको यूक्रेन के करीब और रशिया के बॉर्डर के साथ, उसको भी वो इम्प्रूव करने जा रहे हैं, मगर इस खत्ते के ऊपर बहुत बदतरीन असरात होंगे। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अगर आपके साथ ये वादा कर रहे हैं कि वो आपको इस जैपडी से निकाल लेंगे तो नोबडी कैन टेक यू आउट, बिकॉज एट द मोमेंट इफ यू कंपेयर इंडिया, दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत एट द मोमेंट जो सामने नजर आ रही है, हिंदुस्तान के रुपया, ये अगस्त का महीना वॉज वेरी टफ ऑन इंडिया, और जो वेस्ट एशिया है उसकी बदलती सूरत हाल के हवाले से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने हिंदुस्तान से भी अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। पूरे अगस्त का अगर ख्याल किया जाए तो 2.5 बिलियन डॉलर इंडियन की मार्केट से निकला है। अगर आज हिंदुस्तान रुपए को अमेरिकन डॉलर से कंपेयर किया जाए तो एक अमेरिकन डॉलर 87 रुपए इंडिया के उसके बराबर चलता चला आएगा। ऑफकोर्स ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें असर कर रही हैं, अमेरिका रिसेशन इसमें असर कर रहा है, वेस्ट एशिया की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वो बड़ा इस पे असरअंदाज हो रही है। दूसरी तरफ रशिया ने और चाइना ने एक दफा फिर से अपना हाथ आपस में एक दूसरे से मिलाया, और उन्होंने कहा है कि इन दोनों बड़े ममालिक का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है अमेरिका को जवाब देने के लिए। कहते हैं कि जो इंडिया के रिजर्व अकाउंट्स को रिजर्व्स को रोकने के लिए, इंडिया के जो वो लोग जो बिजनेसमैन हैं और जो बाहर से अपना प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करते हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि मार्केट में से अमेरिकन डॉलर गायब होता चला जा रहा है, तो उन्होंने अमेरिकन डॉलर बाय करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को हेजिंग का नाम दिया जाता है, जिसमें इन्वेस्टर्स वो मार्केट में जो अमेरिकन डॉलर उनको नजर आता है उसको खरीदने के बाद अलग कर, यानी दे वॉन्ट टू यूज इट वेन दे नीड इट। इस चीज को हम आगे जाके कवर करेंगे। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर आर एरिया, सब कॉन्टिनेंट के लिए और पूरे वेस्ट एशिया के लिए इट इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। और वो कहते हैं कि अभी अभी रिसेंटली इस वीक में 1.2 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो हिंदुस्तान से इन्वेस्टर्स ने बाहर ट्रांसफर कर दिया, यानी हिंदुस्तान से निकालने के बाद बाहर की मार्केट में निकला। टोटल अगर आप कंसीडर करते हैं तो 2.5 बिलियन के करीब निकला है। और अगेन इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेंशन्स इन वेस्ट एशिया। इंडियन जो इम्पोर्टर्स हैं वो ऑफकोर्स यूएस डॉलर के ऊपर इन्हसार करते हैं, जिसकी वजह से यूएस डॉलर मार्केट से गायब होता चला जा रहा है। बट आई होप इंडिया विल टेक एन एक्शन एंड लेट्स सी इसको किस तरह से सेटल करते हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद दो एक स्पॉन्सर्स का जिक्र करूंगी। आई वॉन्ट टू टेक यू टू पाकिस्तान। पाकिस्तान से जब ISI का जिक्र होता है और जब पाकिस्तान की बहुत सारे लोग इन दिनों जब सोशल मीडिया पर इन्हसार कर रहे हैं, और उसमें आपने जनाब जनरल हमीद गुल साहब के बारे में बहुत बातें होती हैं, उनकी बास चीजें जो रिकॉर्ड के ऊपर हैं जिनको लोग आज के तनाजर में देखते हैं तो वो कहते हैं उन्होंने तब जो बात कही थी कितनी सच्ची थी आज के दिन में पूरी हो रही है। उनके साहबजादे जनाब अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ होंगे। अब्दुल्ला गुल साहब ऑफकोर्स बेशक के वो जनरल हमीद गुल के बेटे हैं, बट ऑन टॉप ऑफ दैट अब्दुल्ला गुल जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने इलाके हैं उन ममालिक हैं, आई वुड से ममालिक, चाहे आप ईरान की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, रशिया की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, उनकी जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ भी क्लोजली लिंक हैं, एंड ही डज हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ दी इस खित्ते की सूरत हाल के बारे में, उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। I'll take to commercial. Meanwhile, I'll move to my back studio और आपकी मुलाकात करवाऊंगी जनाब अब्दुल्ला गुल साहब के साथ। Please stay tuned.
एशियन फूड सेंटर दी सानिया ही लोकेशन से 15 अगस्त तो 26 अगस्त तक लग चुकी है रखड़ी सेल। वीफ ऑन स्वर्ण होल व्हीट आटा 999, 348 ग्राम नानक पनीर 499, 1 पाउंड बाघ बकरी टी 1099, 10 पाउंड इंडिया गेट रोजाना राइस 1199, 1.6 किलो नानक देसी घ्यो 2599, 4 पाउंड एशियन काला चना 499। एशियन फूड सेंटर दी सारिया ही लोकेशन से तुसी ताजे फल फ्रूट सब्जियां भांडे और मिठाइयां भी ले सकते हो। एशियन फूड सेंटर 4167403262।
इसे आप खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। मैं अपने मौजूद मेहमान के साथ आपकी मुलाकात कराऊंगी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें इस वक्त ताउन दिया है लेम्फाई ने। अब लेम्फाई, अगर आपके पास एंड्रॉयड या एप्पल का टेलीफोन है तो आप लेम्फाई LEMFI ये ऐप डाउनलोड कीजिएगा। दिस इज टू सेंड मनी टू पाकिस्तान। मनी ट्रांसफर की कोई फीस नहीं है, मगर अगर आप पहली बार रकम भेजें और $250 जस्ट $250 भेजें तो यू कैन गेट अप टू $30 कैश बैक। लेम्फाई LEMFI लेम्फाई फॉर द मनी ट्रांसफर। आई हैव अ वंडरफुल पर्सन एंड मैंने जैसे आपसे कहा कि दिस इज अ पर्सन जो कि जियो पोलिटिकल पोजिशन पाकिस्तान से बहुत बाखूबी वाकिफ हैं, मुल्क के और दुनिया के हालात से मुकम्मल तौर पर वाकिफ हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ईरान की बात करें, अफगानिस्तान, रशिया, चाइना, टर्की, इन तमाम के एम्बेसडर्स के साथ मुलाकात होती है। लिखते बहुत खूबसूरत हैं, जनाब अब्दुल्ला गुल साहब मेरे साथ हैं। अ पर्सन हु डज हैव अ कम्प्लीट नॉलेज ऑफ द एरिया एंड पोलिटिकल जो टर्मोइल है इस एरिया में, पूरे के पूरे एरिया में, आप बांग्लादेश की बात कर लें, आप श्रीलंका की बात कर लें, आप इंडिया की बात कर लें, आज इंडिया की आप बात करें तो मैंने आपसे जिक्र किया कि रुपए की कीमत कितनी बुरी तरह से गिरी, इसमें अमेरिका की इन्फ्लेशन ने वो हिंदुस्तान में जाकर भी असर किया है। नंबर टू, वेस्टर्न एशिया की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है और जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसने भी असरअंदाज किया है। इस अगस्त का महीना वॉज वेरी टफ ऑन इंडिया। इन तमाम चीजों के बारे में जिक्र करेंगे हम जनाब अब्दुल्ला गुल साहब से। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आई एम सो सॉरी इट इज वेरी लेट इन पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद अस।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैंने पहले आना था आपके प्रोग्राम में, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए, वो मेरा फोन हैंग अप कर गया, इस वजह से मैं माजरत चाहता हूँ, वरना मैं आई एम मैन ऑफ माय कमिटमेंट।
सर, आपकी बड़ी बढ़ाई है कि इस वक्त 12:30 का टाइम हो रहा है, आप फिर भी मेरे साथ शामिल हुए। जाहिर है पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक जिक्र तो मैं बल्कि ये प्रॉब्लम के हवाले से, बिकॉज जाहिर है हमारे इंटरव्यूज पाकिस्तान से होते हैं, वी आर ऑल्सो सफरिंग, मगर जब मैं पाकिस्तान की यूथ का बात करती हूँ तो जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे आप यूरोप की बात कर लें, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका की बात कर लें, तो इन्होंने रिमोटली सर्विसेज हायर की हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन तमाम से, पाकिस्तान से फिर भी तादाद कम है, बेशुमार आईटी के स्पेशलिस्ट जो हैं उनके पास अपने, उनको स्पेशल सेटअप के साथ वो काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दुनिया के तमाम एडवांस कंट्रीज में फायरवॉल्स लगाई जाती हैं फॉर ताकि किसी किस्म का इबहाम मुल्क में ना आए, मगर अगर ये मुतासर कर रहा है आम लोगों को, इवन लोग जब अपनी डिलीवरीज के लिए भी इंटरनेट को यूज करते हैं वो तक यूज नहीं कर पा रहे, जिससे एक आम डिलीवरी मैन जो बहुत ज्यादा कमा भी नहीं सकता उसकी जिंदगी भी बहुत मुतासर है, तो क्या फरमाएंगे इसके बारे में? आज हमने उसका इल्जाम भी लगा दिया क्योंकि वो कहते हैं भाई भारत ने साइबर अटैक किया और हमारा इंटरनेट स्लो कर दिया, तो गलत बयानी तो नहीं होनी चाहिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। और कोई देर नहीं होता जब अपने मुल्क की बात होती है, और कोई अगर हम अपनी हम्बल कैपेसिटी में कुछ लोगों को बता सकते हैं तो मेरे ख्याल में इट्स अ ग्रेट ऑनर। आज जो हम हैं, जो कुछ हैं पाकिस्तान की वजह से, ये इज्जत, ये माल, ये दौलत, ये सब कुछ, ये शोहरत और ये मोहब्बत, ये सब पाकिस्तान की वजह से।
सुभान अल्लाह, बहुत।
तो इंशाल्लाह ताला रात तक 4 बजे होंगे तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारी ट्रेनिंग ऐसे ही है। जहां तक आपने कहा मायूसियां, देखें बहुत सारी हैं, मुश्किलात हैं दुनिया के अंदर। आज से चंद सालों पहले या चंद दहाइयों पहले इंटरनेट जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी, और जाहिर है दुनिया एक बड़े अपने पैटर्न पे चलती थी, एक सुकून, एक तहमल, एक उसके अंदर बड़ा जो है ना वो ठहराव था। लेकिन अब दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान दोनों मौजूद हैं। लेकिन जहां आपने जिनका जिक्र किया, जाहिर है तमाम ईबे और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम्स के ऊपर और इंटरनेट की बदौलत जो है कारोबार हो रहे हैं, उनको वाकई बहुत लॉस हो रहा है, मुश्किलात हो रही हैं। इस सिलसिले में मेरी आज आला हुकाम से, जो टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने उनके पास जाके गोश गुजार किया कि जनाब इस हवाले से आपको कोई सीरियस इकदाम करने चाहिए, क्योंकि कश्मीर से लेकर कराची तक जो है ये एक बहुत मनफी रुझान पाया जा रहा है। लेकिन फायरवॉल भी देखें, जहां कवानीन है वो अपनी जगह है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं और कि जो मेरे ख्याल में हमारी रियासत के लिए, पाकिस्तान की तशख्स के लिए वो मुनासिब नहीं है, और उनका भी सद्देबाब होना चाहिए। जिस तरह से कवानीन है, हम देखते हैं कि बैंकिंग के कवानीन है, उसमें बिजली के कवानीन है, गैस के कवानीन है, तो ये एक नई दुनिया है। जब पाकिस्तान बना था तो ऐसे कोई कवानीन इसलिए नहीं थे क्योंकि इंटरनेट ही नहीं पता था, किसी को कंप्यूटर वर्ल्ड का जो है अलिफ बे नहीं मालूम था। लेकिन अब उसकी जरूरत आ गई है, और मेरे ख्याल में उसके हवाले से जो फायरवॉल है वो हम चाइना की मदद से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ हमारी अपनी भी बहुत एक्सपर्टीज हैं, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इसके ऊपर कमिटेड है, और इसी तरीके से जो रेलिवेंट इदारे हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात जो 14 अगस्त को इन्होंने खत्म करना था और आज जो है वो उससे जो डेडलाइन है उससे काफी ऊपर चला गया है, ये मेरे ख्याल में काफी जो लम्हा फिक्रिया है कि इतना देर क्यों हो रही है, क्या वजह है कि हम अपनी डेडलाइंस जो है वो मीट नहीं कर पा रहे। एक तरफ हम जो है वो आईटी के शोबे के अंदर लोगों को तरक्की की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम इंटरनेट को ही जो है कमजोर कर देंगे तो फिर जाहिर है बहुत मसाइल भी खड़े होंगे। लेकिन मैं यहाँ बड़े दुख से कहूंगा कि जो सबसे ज्यादा बेहूदगी देखी जाती है उसमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तान से भी शामिल है, और ये इंटरनेट जो है वो लोगों को फसलें उगाने का तरीका भी बताता है, ये इंटरनेट जो है लोगों को एजुकेशन भी देता है, ये इंटरनेट जो है लोगों से अभी आप हमारे से बात भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम अपने प्यारों से जो है वो हाल अहवाल ले सकते हैं। लेकिन अगर मनफी किया जाए तो फिर डार्क वेब और दीगर इस किस्म की जो इसके जो मनफी पहलू हैं जो मेरे ख्याल में एक मुआशरे के जो लिए जो है एक वबाल है वो भी अपनी जगह मौजूद है, तो ऐसे लोगों को कर्ब करने के लिए, ऐसी सोच को रोकने के लिए फायरवॉल्स का लगाना मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क के लिए वो जरूरी है, और दुनिया के हर, आपने खुद फरमाया कि हर मुल्क के अंदर ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आज मेरी मुलाकात हुई उसके हिसाब से जो मुझे अभी तक पता चला है कि इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हम अगले चंद दिनों के अंदर इस मसले का जो है वो मशबत हाल निकाल लेंगे और लोगों को इस मुश्किल से, इस परेशानी से निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमारी जो जनरेशन है उसको खाना ना दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेट ना दो तो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
बात चुकी है सर, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि देयर वाज अ टाइम कि हम टेलीफोन के बगैर बहुत आराम से गुजारा करते थे, और आज आप टेलीफोन के बगैर गुजारा नहीं है, मगर आज के दौर में जब बिजनेस का ज्यादातर रुझान वर्किंग फ्रॉम होम, तो इंटरनेट इज वन ऑफ द नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ एंड एक हकीकत है हमारी जिंदगी की। मगर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि मुल्क भर में उन्होंने सुस्त इंटरनेट का इतराफ भी किया है, और उन्होंने कहा मेरीन केबल में खराबी और भारत के साइबर हमले की वजह से इंटरनेट की रफ्तार में कमी। सर 21वीं सदी में अगर हम गलत बयानी करेंगे और यूथ की नॉलेज कंपैरेटिवली मेरे आपसे फार मोर है, बहुत ज्यादा है, ये गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, यस इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री यू मस्ट हैव द करेज टू जस्ट से, बिकॉज यू नो व्हाट, नंगी तस्वीरें बहुत देखी जाती हैं, न्यूड जैसे अगर आप गूगल करके देखें तो देखिए किस मुल्क में इस तरह का मवाद देखा जाता है, तो शायद उसको कंट्रोल करने के लिए ये किया गया, या दहशतगर्दी, आज ही बल्कि उन्होंने पाकिस्तान से आसिफ फरहान को पकड़ा है, यानी आप इमेजिन कीजिएगा इस इंसान की नस्ल क्या होगी कि इंग्लिस्तान के जो दंगे हुए हैं उसमें इस शख्स का रोल है। व्हाट अ लायर मैन कि उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया कि भाई कत्ल करने वाला इमिग्रेंट है, हु इज दिस इमिग्रेंट, जहां से ये दंगे फूट पड़े थे। तो यस, अगर आपने एक काम किया है तो व्हाई टू ब्लेम अदर्स, जस्ट टेल द ट्रुथ आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ, मेरा सिर्फ इतना कंसर्न।
मैं आपसे सहमत हूं इस बात के ऊपर कि बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि कल वजीर आजम हमारे जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही एक मेरे ख्याल में बात बड़ी ही बेतुकी किस्म की कर दी, जिसके अंदर उन्होंने मईशत के हवाले से एक बहुत बुलंद बांग दावा कर लिया। मतलब ऐसी बातें एक इस मनसब के शख्सियत के साथ जो है वो जचती नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोग बड़े, आपने जैसे कहा कि बड़े अवेयर हैं, वो अब कोई पत्थर के जमाने में तो है नहीं जिनको कोई इधर उधर की बातों से चला लिया जाए। इसी तरीके से साइबर अटैक वगैरह पहले भी होते हैं, और अगर ये साइबर अटैक हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी नाकामी है, और ये नाकामी जो है वो हर चीज भारत के खाते में नहीं डालनी चाहिए। भारत इतना कोई अभी कोई दे आर नॉट 10 feet tall कि वो हम जो है वो बिल्कुल ही उनके सामने गिर जाएं। और जैसे आपने फरमाया कि भारत हमारा भी एक वक्त में बहुत अच्छा जो हमारा आईटी का बिजनेस था, लेकिन फिर उनको खास तौर पे भारत की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, और अगर भारत की तरफ शिफ्ट कर दिया गया एक इंटरनेशनल प्लानिंग के जरिए एक सोचे समझे जो है मनसूबे के तहत, तो जाहिर है उससे फिर पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है वो हिट हुई। मैं समझता हूं कि आप पाकिस्तान में बड़े जौहरे नायाब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अभी भी इंजीनियरिंग हो या आईटी हो या वो डॉक्टर्स हो या दीगर शोबा है जिंदगी हो, उनमें वो बहुत अपना एक मुकदम मेरे ख्याल में मुकाम रखते हैं और इसके लिए जो है वो हमें कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। कौमों की जिंदगी में छोटी मोटी चीजें आती रहती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमें अपनी डायरेक्शन और अपनी सिमत का तयन करना जो है वो बहुत जरूरी है। ये हमेशा एक ब्लेम डाल देना कि जी समुन्द्र के नीचे जो है वो केबल खराब हो गई, भाई आपने केबल क्यों खराब होने दी, क्या वजह है? आप पैसे ले रहे हैं पाकिस्तानी कौम से ले रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, आपके मल्टीपल जो है इससे बिजनेसेस जो है वो जुड़े हुए हैं, तो अगर ये नाअहली है तो फिर तो उस नाअहली की सजा होनी चाहिए ना। हमें जजा और सजा का कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो तहकीकात होनी चाहिए कि क्या नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ, और अगर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ तो किस अथॉरिटी ने उसको इजाजत दी, और अगर उसने इजाजत दी तो फिर पकड़ के लटका दें, सीधी सी बात है। लेकिन आपको यहां ये तो पता चलेगा कि साइबर अटैक हो गया, फलाना हो गया, कोई जो लोग यहां तनख्वाहें ले रहे हैं उस अटैक्स को रोकने के लिए, तो फिर उनको जाके जो है वो घर भेज देना चाहिए। ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोगों को जो है आप मेरे ख्याल है कि उनका कला कमा करके और हमें अच्छे लोगों से रिप्लेस करना चाहिए। तो आई टोटली एग्री कि दिस इज द टाइम दैट वी शुड बी कॉलिंग स्पेड अ स्पेड।
बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि पिछले हालात से जो कुछ भी नजर आता है 9 मई के वाकयात, और बेशक आपने अपना एनालिसिस बयान किया, मगर मैं एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हुए जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट, कि दिस इज अ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आर आर्मी डिपार्टमेंट के हिजान पैदा किया जाता है इंटरनेट के जरिए, तो हम फायर वॉल लगाएंगे, जिसके लिए फिर इंटरनेट को सुस्त भी किया गया। मेरा सर अगला सवाल, मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि गलत बयानी ना की जाए, क्योंकि वो ज्यादा क्योस पैदा करेगा। मेरा सर एक और ख्याल है कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का तो कोई बात नहीं करता, और मैं टोटली अगेंस्ट हूं कि कभी भी कोई मुल्क सब्सिडीज देने पे तरक्की नहीं किया करते होते, आप तो रिसोर्सेज पैदा किया करते होते हैं। पाकिस्तान में रिसेंटली एक वाकया हुआ है कि एक खातून कराची में, आप इमेजिन कीजिए कि एक बच्ची अपने बाप के साथ मोटरसाइकिल बजा रही है, उसकी जिंदगी के ख्वाब हैं, यानी वो औरत लैंड क्रूजर में बैठी होती है, इस गाड़ी को न मालूम उसने किस स्पीड के साथ मारा और उसके बाद अगली गाड़ियों को भी टक्कर मारते हुए ये बाप और बेटी की तो डेथ हो गई, और भी किसी की डेथ हुई और बेशुमार लोग जख्मी हुए हैं। मुझे इस वाक्य का, इस औरत को जब अरेस्ट किया तो ये औरत मुकम्मल तौर पे नशे की हालत में थी, शायद उसने आइस का नशा था या उस पे शराब का नशा था, वल्लाह आलम बिस्सवाब। मुझे डर लगता है कि वो इंस्पेक्टर जिसने फर्स्ट रिपोर्ट दी है, या इस औरत को लेके जाया जाता है हॉस्पिटल टू प्रूव कि शी हैज अ मेंटल इलनेस, जिस डॉक्टर ने कहा कि नो शी डजंट हैव अ मेंटल प्रॉब्लम, शी वाज इंटॉक्सिकेटेड, यानी मुकम्मल तौर पर नशे की हालत में थी, इन दोनों को तो मरवा दिया जाएगा। मुझे इस तमाम बात का ख्याल क्यों आया कि पाकिस्तान में 3-4 वाकयात पिछले कुछ अरसे में हुए। आपको याद होगा कि शाहरुख जतोई जिसने मर्डर की कन्विक्शन हुई थी, शाहजेब मर्डर केस में इस यंग बच्चे को इसने मारा था, और आप इमेजिन कीजिएगा कि उस लड़के को, अमीर घर का लड़का जतोई फैमिली से ताल्लुक रखता था, इन दोनों को उन्होंने कहा जी बीमार हैं, उन्होंने एक अस्पताल में मूव किया। बाद में जब इस अस्पताल का पता चला तो पता चला कि ये जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया था टू ट्रांसफर हिम टू हॉस्पिटल, मगर ये हॉस्पिटल को उन्होंने प्रिजन का नाम दिया था, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट जगह थी, जस्ट बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था वो। इस औरत के साथ भी होगा, उसके बाद मेरा ख्याल है जो शाहरुख जतोई है वो तो शायद अब पाकिस्तान में भी नहीं है, उसको मुल्क से बाहर निकाल दिया बिकॉज दे आर रिच पीपल। तो ये जो वाकया हुआ है, और ये खातून भी किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी है, तो इंसाफ गरीब के लिए है ही नहीं, अमीर आदमी आवाम को चुंटियों की तरह से रोनता हुआ निकल जाएगा।
जी ऐसे ही है जी, आवाम तो चुनती है ना जी, आवाम तो चुनती की भी हैसियत नहीं रखती। मैं आपको थोड़े से आपके लिए याद करा देता हूँ। रेमंड डेविस एक अमेरिकी एजेंट था और उसने फिर बाद में आके किताब भी लिखी और बड़ी एम्बेरसिंग किताब है वो अनफॉर्चुनेटली, और उसके अंदर जो है फिर वो यहाँ खुलेआम पिस्तौल से फायरिंग करते हुए कैंट के अंदर जो है, और उसके बाद फिर वो पकड़ा गया और फिर क्या हुआ, चला गया बाइज्जत। फिर शाहरुख जोदोई का भी आपने तस्वीर दिखाई, मैंने आज ट्वीट किया हुआ विक्ट्री का साइन बनाते हुए, दो कातिल एक कहानी, मैंने उस पर जो टाइटल दिया कि शाहरुख जोदोई था और उसके ऊपर जो है उसके ऊपर केस चला, और उसके बाद केस चला और फिर बाद में उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इनके ऊपर तो मोहतरमा के ऊपर नताशा के ऊपर जो है वो केस चलने से पहले ही जो है वो लंगड़ा कर दिया गया, क्योंकि उनको जो है कहा गया कि ये तो दिमागी मरीजा हैं। अभी बहुत बातें होंगी, ये एक इंडिपेंडेंट पावर यूनिट जो आईपीपी कहलाता है, जो एक बड़ी लंबी दास्तान है, यानी कि लुबे लुबाब अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान में 100 आईपीपी हैं और उन्होंने जो है पिछले 10 साल के अंदर जो है 18 खरब रूपये की, यानी कि 18,000 अरब रुपए की बिजली जो है हमने वो पेमेंट की है पाकिस्तानी कौम ने, जो बिजली बनी है वो टोटल 900 अरब रुपए की बनी है, यानी कि 9 खरब की बनी है, और जो हमने पेमेंट की है वो 18,000 अरब की है, यानी कि 18 खरब की। अब मजे की बात यह है कि उस 100 आईपीपी के अंदर 25 तो बिल्कुल बंद पड़े हैं, उन्होंने 1 वाट बिजली जो है वो नहीं प्रोड्यूस की, और दूसरी तरफ जो है वो 53 ऐसे हैं, 53 ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 10% बिजली पैदा की है। अब अंदाजा करें कि हमने उनको पूरी पेमेंट की है उनकी, यानी कि अगर कैपेसिटी जो है वो 100 मेगावाट बनाने की है तो हमने 100 के 100 की दिया, चाहे वो उन्होंने 1 वाट बनाई है या 1 वाट भी नहीं बनाई, तो ये तो आलम है। तो ये उसी तरह से एक आईपीपी जो गुल अहमद आईपीपी है उसके मालिक की ये जो है वो एलियन है, और देख लें कि वो किस ड्रेस में थी, किस हालत में थी। अभी कहा जाएगा कि जी वो तो बिल्कुल पागल है, वो फलाना है। भाई अगर वो पागल थी या कुछ था तो फिर उनको पकड़ के अंदर रखना चाहिए था ना, ये तो नहीं है। अगर मैंने फर्ज करें घर में शेर एक पाला हुआ है लाइसेंस के साथ और वो शेर साथ वाले घर में जाके किसी को भंबोड़ खाता है तो फिर मेरे ऊपर कत्ल का मुकदमा चलता है। फिर आपको याद होगा कि एक मिनिस्टर थे बलूचिस्तान में जिन्होंने एक ट्रैफिक वार्डन को,
जी सर मैं वो आपको याद दिलाना चाह रही थी, उसका हमें आज तक पता ही नहीं चला, वो मिनिस्टर तो छूट गया।
वो सब, और फिर एक मिनिस्टर साहब थे जिनके घर में प्राइवेट जेल बलूचिस्तान में निकली थी, तो फिर उसका क्या हुआ। फिर इसी तरीके से जो है वो आप देखिए, ये एक लंबी कहानी है, इसको मैं कहां तक आप सुनेंगे और कहां तक सुनाऊंगा। असल बात यह है कि देर इज नो रूल ऑफ लॉ। अब इन लोगों को जो है पकड़ के जब तक के हम कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक मामला नहीं बनेगा, लेकिन जो मेरा ख्याल है यही बहाने होंगे। वो हमारे चीफ जस्टिस भी गए और उन्होंने शाहरुख जोदोई का वहां वीवीआईपी जो सिस्टम था वो भी देखा, जहां बकायदा टीवी वीसीआर लगे हुए थे, जहां एसी लगे हुए थे, जहां खुदाम उसकी एक कातिल की खिदमत कर रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसके अलावा मैं क्या बोलूं। मुझे अफसोस है कि मेरा पाकिस्तान जिसके अंदर इंसाफ की बुनियाद के ऊपर काम होना था, अनफॉर्चुनेटली जिसको जगह मिलनी चाहिए है उसको सजा मिल रही है और जिसको सजा मिलनी चाहिए है उसको जगह मिल रही है।
बहुत शुक्रिया सर, आपने कहा 94 ऑल टुगेदर आईपीपीज हैं जिसमें से 25 बिल्कुल ना बंद पड़े हुए हैं, 53 10% प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर सर ये तमाम के तमाम आईपीज जिन लोगों के नाम पे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम इज इन टुडेज गवर्नमेंट, मेजॉरिटी ऑफ देम आज की गवर्नमेंट में, ये जो PDM2 की गवर्नमेंट का हिस्सा है, हाउ कैम दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। या तो उनको चाहिए कि वो गलती का, मेरी एक से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तो हमने ये तमाम की तमाम मशीनरी को इम्पोर्ट करके हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, सो वी क्वालिफाई कि वो हमको इसकी पेमेंट करें, बिकॉज वो हमसे बिजली पैदा नहीं करवा रहे, गवर्नमेंट भी उनकी है, आईपीपीज लगाने वाले भी वो लोग हैं। सफर कौन कर रहा है? मुल्क कर रहा है, और मोस्ट ऑफ देम दे टेक मनी इन डॉलर्स अब्रॉड। اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ ہمارے ادارے باقی چیزوں کا نوٹس دیتے ہیں. یہ بھی معاملہ ریکارڈ ایکٹ کی طرح سے مجھے لگتا ہے الٹیمیٹلی پاکستان نے اس کا بھی جرمانہ ہی پے کرنا ہے کہ آپ نے آئی پی پیز اوپن تو کروا دیے تھے تو یہ کیا ہوا. تو ناٹ دس گرل ناؤ, اب تو ہم آئی پی پیز کی طرف چلے گئے. آئی پی پیز میں سر اسٹیبلشمنٹ یا اٹس اے ہائبریڈ گورنمنٹ, وائی ڈونٹ دے ٹیک این ایکشن؟ دا گورنمنٹ کنٹری ڈزنٹ ہیو منی, تو یہ پھر آئی پی پیز کا کیسے ریزالو ہوگا؟ یہ سارے کے سارے تو اس وقت کی حکومت میں ہے اس کے اونرز.
جی جی ایسا ہی ہے. وہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں ماشاء اللہ ریکوڈیک میں ان کے بھائی نے جو ان کے کمال دکھائے. صادق سنجرانی صاحب 97 میں ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر کے طور پر ایک پرائم منسٹر کا پروگرام تھا اس میں بھرتی ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اب ان کو سعودی بادشاہوں کی طرح مالا مال کیا ہوا ہے الحمدللہ, تو وہ ان کے اوپر اللہ کی خاص مہربانی ہے. اسی طریقے سے انوار الحق کاکڑ صاحب 330 ارب روپے کا چونا لگا کے آج بھی وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت برطانیہ میں پراپرٹیاں خرید رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ 12 سال وہ میرے خیال میں غیر ملکی افغانی پاسپورٹ کے اوپر پولیٹیکل اسائلم پہ برطانیہ رہے, لیکن الحمدللہ وہ وزیر اعظم پاکستان بنے. اس میں ویسے کوئی حرج نہیں ہوتا کیونکہ اگر شوکت عزیز صاحب جو ہیں ان کو پاکستانی پاسپورٹ پکڑایا جا سکتا ہے, اور اسی طریقے سے معین قریشی صاحب کو سنگاپور میں پاکستانی پاسپورٹ پکڑایا جا سکتا ہے, تو جناب پاکستان از فری فار آل. کون کہتا ہے یہ ملک جو ہے وہ فری نہیں ہے؟ بالکل آزاد ملک ہے.
آپ نے انوار الحق کاکڑ صاحب کی بات کی, مگر انوار الحق کاکڑ صاحب کو تو پی ڈی ایم ون میں آپ کے ادارے لے کے آئے تھے. انوار الحق کاکڑ صاحب تو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, ان کو تو سینیٹر بھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا. ہاؤ کم دے ڈیڈ ناٹ نو کہ اس مین نے کتنا چونا لگایا؟
میں گزارش یہ کر رہا ہوں, غلط کیا میں نے, غلط کیا میں. یو نو میں کسی غلط ایکشن کو, میں آئی ایم اے فری مین, میں کسی کا یہاں ریپرزینٹیٹو تو نہیں ہوں. جہاں اچھا کیا وہاں ہم نے سب کو مانا, جہاں پولیٹیکل لوگ بھی اچھا کرتے ہیں وہاں ہماری گورنمنٹ بھی اچھا کرتی ہے, ادارے بھی اچھا کرتے ہیں, لیکن جہاں غلط ہے وہاں تو غلط ہے. میرے خیال میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور جہاں تک آئی پی پی کی بات ہے, 93 کے اندر بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی, اس کے اندر ایک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پاور پالیسی جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا تھا, اور اس کے تحت جو ہے پھر یہ سارا کام شروع ہوا. اس کے اوپر میرا ایک لاگ موجود ہے پورا ڈیٹیل کے ساتھ, لیکن اس میں میں لب لباب آپ کو یہ بتا دوں.
اب سر مجھے بھجوا دیجیے گا, ہم اس کو بھی آئی ول میک پیپل لسن ٹو دیٹ.
میں ضرور آپ کو بھیجوں گا. دیکھیں ایک لب لباب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, بڑے انٹرسٹنگ ہے, ایک لطیفہ ہی صحیح سمجھ لیں. ایک ترکیہ سے جہاز منگایا گیا اور وہ بحری جہاز تھا, اور ایک سمجھے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ تھا, اس کے اوپر ایک بڑا جنریٹر لگا ہوا تھا جو بجلی پروڈیوس کرتا تھا. اس کے ساتھ پورے معاہدے ہوئے, سب کچھ ہوا, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک بڑا یہاں اعلان کیے کہ جناب اب بجلی کے جو ہے وہ اندھیرے مٹا دیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, بلنگ بانگ دعوے جو ہے وہ کر دیے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہاز جب آ گیا اس کے ساتھ ہماری ایک ڈیل ہوئی تھی, اور وہ جہاز کا پتہ چلا کہ موصوف میں جو ڈیزل ڈلتا ہے وہ ڈیزل پاکستان کی کسی ریفائنری میں بنتا ہی نہیں ہے. الحمدللہ جس نے یہ معاہدہ کیا, جس نے اس میں پیسے بنائے, کسی کو کوئی سزا نہیں ملی. الحمدللہ سارے حاجی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں میں نے وہی کہا نا کہ جس کو جزا ملنی چاہیے اس کو سزا, اور جس کو سزا ملنی چاہیے اس کو جزا. ابھی مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ابھی اس موجودہ حکومت نے مزید آئی پی پیز کے لائسنس جاری کر دیے. ہماری کیپیسٹی جو ہے اس ٹائم پہ 22,000 میگا واٹ جو ہے ہم اس کی ترسیل ہے بجلی کی, یعنی کہ ہم جو ہمارا جو اس ٹائم پہ بجلی کا انفراسٹرکچر ہے جس کو تاریں کھمبے اور ٹرانسفارمر کہہ سکتے ہیں, وہ ہمارے پاس 22,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں, لیکن جو ملک میں پروڈیوس ہو رہی ہے وہ 38,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں ابھی ان جو نئے آئی پی پیز کو مائنس کر کے. یعنی کہ یہ عالم ہے کہ یہ کس نے فیصلہ کیا, یہ کیوں کر ہوا, یہ کس لیے ہوا. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اس پہ آپ کو کہاں تک سناؤں.
بہت شکریہ. مگر سر وہ جو 25 آئی پی پیز,
آخری اس میں بات جو ہے بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹیکس سبسڈیز دی ہیں اس کے اندر, جو ان کو کہا کہ ڈالر میں پیمنٹ, میں آپ سے ایک بات کروں अगर पाकिस्तान के आईन में तरमीम हो सकती है, और हमने देखा कि अमेंडमेंट्स आती रही और आ रही हैं, अगर वो आ सकती हैं तो क्या इन मुआहिदों में तरमीम नहीं हो सकती? क्या ये नौजुबिल्ला कोई किताब अल्लाह है जिसके अंदर कोई देर वेर की तब्दीली नहीं कर सकती? हम पाकिस्तानी कौम को कत्ल कर दें, इनको बहरे अरब में धकेल दें, इनको जो है केटू पहाड़ से नीचे जो है कुचल दें, कि क्या करें इनको, इनका कसूर क्या है?
सर मैंने भी यही कहा कि यही गवर्नमेंट के लोग हैं, इन्हीं के पास आईपीपीज हैं जो इस वक्त आपकी पोजीशंस पे बैठे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर पोजीशन पे हो, चाहे वो प्रेसिडेंटल पोजीशन पे हो। 25 आईपीपीज बिल्कुल बंद हैं जो काम नहीं कर रहे, बाकी 10% है। तो नए कॉन्ट्रैक्ट देने की क्या जरूरत थी? उन्हीं की कैपेसिटी को बढ़ाते हुए या उन्हीं को काम ज्यादा दे के वहां से पावर जनरेट ज्यादा क्यों ना करवाई गई?
भाई आप कैसी बात कर रही हैं? आप उनकी रोजी रोटी पे लात मार रही हैं भाई, माल पानी कैसे बनेगा?
सैड सर, सैड सर। सर आइए मैं आगे लेके जाती हूँ। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब ने यूथ कन्वेंशन के साथ एड्रेस किया उनके, मुझे तो खैर मैं आपको गलत नहीं कहती, मुझे पाकिस्तान के यूथ में उन्हें उनकी आंखों में चमक भी नजर आई, उनको उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस भी नजर आया, मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी आला पोजीशन है आपका यूथ बेहतर से बेहतर पढ़ने के बावजूद नौकरियां नहीं मिल रही। एक इदारे से उठते हैं, रिटायर होते हैं, दूसरे इदारे पे जाके उनको, और आपके पास बेशुमार मिसालें हैं, आपकी यूथ को तो टाइम ही नहीं मिल रहा। और अगर वो फ्रीलांसर्स होके इंटरनेट पे काम कर रहे थे तो इंटरनेट को आपने फायरवॉल से रोक दिया। मगर हमारे जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उन्होंने बिल्कुल कहा कि आपकी आंखों की चमक देखकर यकीन होता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज है, मुझे डाउट नजर आता है। और उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज भी किया कि यूथ हमारा सरमाया भी है, और उन्होंने ये भी वादा किया कि वो सरमाए को जाया नहीं होने देंगे। और यहां पे उन्होंने गजा वगैरह और लीबिया का और इजिप्ट का, इन तमाम ममालिक का जिक्र किया कि शाम के उन्होंने अपने फौज के साथ ही बेसिकली ज्यादती की थी ना, तो कैसे भुगत रहे हैं? इसके बारे में अगर तीनों चीजों को कवर कर लें आप।
देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये तमाम मुल्क जो हैं इनमें जो अस्करी इदारे थे उनको कमजोर किया गया एक साजिश के तहत, इसमें कोई मतलब दूसरी राय नहीं है। लेकिन जहां तक जो है वो यूथ के हवाले से अल्टरनेट, आपने क्या देखे ना, मकसद ये है कि यूथ को आपने उन लोगों को सामने लाके खड़ा कर दिया, इक्तदार की मसनद पर बिठा दिया जो इस लायक नहीं थे, जिनके अंदर आपस में फूट पड़ी है, जो करप्शन के अंदर जो है वो घुटनों घुटनों नहीं बल्कि सर तक डूबे में है, और हमने सब देख लिया है, ये कोई ऐसी बात नहीं। और ये बात हमें खुद अफवाज पाकिस्तान ने बताई थी कि ये वो लोग हैं जिनको हम रिजेक्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने करप्शन की, चोरी की, फलाना किया, धमकाना किया, कोई 10% कहलाया तो पता नहीं कोई कुछ और कहलाया, जब किसी ने सरे महल लिया तो किसी ने सरूर महल लिया। मकसद यहां ये कहने का है कि ये सारी के सारे जो है हमने देखे में, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, और इसके अंदर जो है जो आंखों में चमक तो यकीनन होगी, नौजवान नस्ल है उनके अंदर तड़प भी होती है, ख्वाहिश भी होती है, और यकीनन पाकिस्तानी यूथ भी मैं समझता हूं कि वो है वक्ती तौर पे डिसअपॉइंटेड है, लेकिन उनकी डिसअपॉइंटमेंट कैसे दूर होगी? या तो मौके जो है पैदा करें पाकिस्तान में। मुझे बड़ा अफसोस है, मेरा कल बहुत दिल उदास रहा सारा दिन, कि 100 मेजर इंडस्ट्री जिसमें से सितारा टेक्सटाइल जैसा नाम, बड़ा नाम फैसलाबाद का, वो बंद हो गई, उसको ताला लग गया। पाकिस्तान में इस टाइम पे पिछले एक माह पहले 25%, ये मैं नहीं कह रहा ये, बल्कि जो ताजरान एसोसिएशन है जो कि बिजनेस कम्युनिटी की एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट ने बोला कि 25% इंडस्ट्री को ताला लग चुका है। और कल के दिन के अंदर 2,00,000 लोग जो थे वो बेरोजगार हुए। 2,00,000 का मतलब आप जानती हैं कि हमारे एक आदमी के साथ 10 लोग जुड़े हैं, तो 20,00,000 लोग कल के दिन में बेरोजगार हुए हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है हम बात करते हैं कि 35% पिछले महीने 25%, अब के वक्त 35% इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है। इस खत्ते की सबसे महंगी बिजली और सबसे महंगी गैस जो है वो हम अपनी इंडस्ट्री के लिए खरीद रहे हैं। अब बिजनेसमैन जो है वो ज्यादातर जो है वो मुल्कों से बाहर जा रहा है, कोई मोरक्को लेके जा रहा है, कोई थाईलैंड लेके जा रहा है, कोई मलेशिया लेके जा रहा है, कोई अमेरिका लेके जा रहा है, कोई दीगर ममालिक के अंदर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर वो लेके जा रहे हैं। और हद ये है कि अब अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं और वहां जो है वो कहते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री लगाएं। देखिए बिजनेसमैन क्या करे, उसको तो आपने चोर बना दिया। जो आदमी आपके जो तमाम इदारे हैं, जो तमाम आपकी हुकूमत चला रहा है, उसको वीआईपी नहीं है, वो चोर है, वो बेईमान है। क्योंकि वो जब सैलाब जलजला आता है तो वो अपने तिजोरी खोल देता है, जब जो है वो मुल्क को टैक्स देने की बारी आती है तो वो कर देता है। हमारी इतनी खूबसूरत पॉलिसीज हैं कि पाकिस्तान की तारीख में एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमने पाबंदी लगा दिया, अलहमदुल्ला पाबंदी कह रहा हूं, टैक्स लगा दिया, यानी कि जो लोग दुनिया एक्सपोर्ट पे रिबेट देती है हमने एक्सपोर्ट पे टैक्स आयद किया है।
क्या हो गया
जी हम, और हम फिर इस पे हम ये कहते हैं कि जी हम जो है वो आगे यूथ के लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 8 लाख लड़के लड़कियां जो हैं हर साल, मैं अरशद साहिबा मैं रोजाना की तादाद पे लोगों से मिलता हूं और खासतौर पे यूथ से मिलता हूं। आप यकीन माने इस टाइम पे इटली की एम्बेसी के अंदर, स्पेन की एम्बेसी के अंदर, पोर्चुगल की एम्बेसी के अंदर, जो इस टाइम पे जो बाहर के एजेंट हैं जो लोगों को झूठा बना रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि उसमें एम्बेसी इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने का, इसमें वीजा नहीं है, इसमें ये कंफर्मेशन नहीं है कि वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेने के पैसे जो हैं वो 6 लाख से 9 लाख रुपया अपॉइंटमेंट का है। लोग अपने घर बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, अपने जायदाद बेच रहे हैं, आशाशाजात बेच रहे हैं कि हमारा बच्चा कहीं उसका मुस्तकबिल समझ जाए। लेकिन इसमें यहां मायूसी मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि दुनिया में हर मुल्क में जा रहे हैं, भारत जिसकी 650 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, आज वहां 25 लाख लोग जो है वो सालाना जो है नकल मकानी कर रहे हैं मुल्क से छोड़ के, बाकी इवन इसराइल की फौज के अंदर जो है वो भर्ती हो रहे हैं, आपके आपको इल्म है इस बात का, तो ये कह देना। लेकिन साथ ही साथ आप, आपकी इंडस्ट्री नहीं है, आपकी इंडस्ट्री नहीं है तो आपकी मईशत कैसे बढ़ेगी, आपका टैक्स नहीं आएगा तो मईशत जो है वो तो डाउनफॉल चलेगा, फिर आपके अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो मायूसी बढ़ेगी, मायूसी बढ़ेगी तो फिर केओस के अंदर जो है वो तो फिर यही होता है कि मतलब या मैं नहीं या तू नहीं, तो फिर ये तमाम चीजें जो हैं, जब हमारे सिर्फ हम यूथ को वक्ती तौर पे हम मोटिवेट कर सकते हैं। और फिर ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बड़ी नपी तुली, बड़ी अच्छी, उन्होंने इससे पहले पीएमए की पासिंग आउट परेड की जो 14 अगस्त की परेड थी उसपे भी बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत, मुझे अभी किसी चाइनीज हाई डेलीगेशन जो हाई डेलीगेट का मैसेज आया कि जी मैं बड़ा इम्प्रेस था उनकी तकरीर सुन के। तो मकसद यहां ये है कहने का कि लेकिन क्या सिर्फ ये उन्हीं का काम है, क्या बाकी लोगों का काम नहीं है,
क्या आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर फौज ने ये सब कुछ करना है तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही
है जी, बाकी क्या कर रहे हैं, और क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है कि वो यूथ में जा सकें, क्या उनमें इतनी सख्त हिम्मत हौसला है कि वो यूथ में जा सकें। अगर इतनी हिम्मत हौसला है तो आए, अब्दुल्ला गोल भी चलता है यहां पाकिस्तान की सड़कों पर, आप भी तशरीफ लाएं, देखते हैं कि सड़क के उस पार कौन इज्जत के साथ पहुंचेगा और कौन पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा।
बहुत शुक्रिया सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि स्टैंस बड़ा क्लियर होना चाहिए, आपका नुक्ता नजर बड़ा क्लियर होना चाहिए। इससे पहले आज तक भी जिस पार्टी को भी बनाया, फिर उसको डीफेम किया और उस पर इल्जाम लगाया गया दहशतगर्दी का, आजकल हम दहशतगर्दी का बड़ा जिक्र सुन रहे हैं और जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उन्होंने भी फतेह मुबीन का जिक्र किया, दहशतगर्दी की जंग का भी तस्करा किया। एक जमाना था कि कराची के लोग मर मिटते थे एमक्यूएम के नाम पे, उसको दहशतगर्द करार दिया गया था और प्रूफ दिखाए गए थे, इतने बेशुमार केसेस थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, जिसमें नवाज शरीफ साहब को पिक करने के बाद, क्योंकि उनको गिराना था, उनको जलील ख्वार भी किया गया, उनको साबित किया गया कि इनके साथ रॉ के साथ ताल्लुकात थे, इंडिया के आला लीडर्स आके इनको, बिजनेसमैन इनको आके मिलते थे वगैरह वगैरह। अब आज पीटीआई के बारे में भी ये बात की जा रही है। और कल जनाब नईम साहब, हाफिज नईम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब इनकी इनको पोजीशन चाहिए होती है तो ये जूते चाटते हैं, जब इनको निकाल दिया जाता है तो ये इसी फौज के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो नाकाबिले यकीन है, और इनको एस्टेब्लिशमेंट को पुराने अल्फाज भूल भी जाते हैं, और फिर जब इनको अपना मफाद चाहिए होता है तो ये फिर सारे, ये मैं नहीं कह रही, ये हाफिज नईम साहब ने अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने उन कन्वेंशन में ये बात कही। दिस इज माई सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और फिर मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे आपकी पार्टी के बारे में करूंगी। जी बताइए।
देखिए, जो ये हाफिज नईम साहब ने जो बात की, मैं तो कब से यही बात कर रहा हूं कि इसमें कोई मेरे ख्याल में दूसरी राय नहीं है कि जब आप किसी, आपको पीके मैप की अगर देख लें पुरानी हिस्ट्री, उसके बाद आप जो है वो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस को देख लें, फिर आप इसी तरीके से पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट को देख लें,
फिर पहले उनको बनाया फिर उनको डिफेम किया,
जी जी, और देखिए ना फिर उनके कैसे उनके जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है बंदे आ गए और इवन मिनिस्टेरियल लेवल के ऊपर उनको खड़ा कर दिया। फिर इसी तरीके से जो आप देख लें ये जो तहरीके लद्दाख थी उसको कालेदम करार दे दिया गया, फिर क्या हुआ। देखिए, ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो इल्जाम थे वो दुरुस्त थे, ये भी मैं आपको बता दूं, इल्जाम बिल्कुल दुरुस्त थे, लेकिन फिर जब इंसान कहता है कि जी आप जो मुल्क की हालात हैं या जो भी अपने सोच और अपनी फिक्र के मुताबिक, वो इनको फरामोश कर देते हैं। देखें, ये फिर ये जो बात है ना, ये बड़ी गलत है। अगर कोई आदमी क्रिमिनल है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मेरे वाले मुजाहिद इस्लाम जलालुद्दीन रहमतुल्लाह कहा करते थे कि इंसाफ करने से मुआशरे मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं हुआ करते। तो ये थोड़ी सी हिम्मत पकड़ लें, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या पाकिस्तान मांच हो गया? क्या पाकिस्तान के पास कोई और क्यादत मौजूद नहीं है? क्या नौजवान मौजूद नहीं है? अच्छे लोग मौजूद नहीं है? आरफा बीबी, मेरा ये यकीन है, कामिल है अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की हद तक, कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अच्छे लोगों की वजह से कायम है, बुरे लोग हम पर मुसल्लत हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये इस मुल्क में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, बहुत बड़े गनी उनके हैं दिल, और बहुत उन्होंने मेहनत की है, काम किया है, और अब भी ये जो इंडस्ट्रियां चल रही हैं, इनको दोनों हाथों से मेरा सलाम है कि ये कैसे चला रहे हैं इन हालात में, जहां एक तरफ भत्ताखोरी हो रही है, जहां एक तरफ बिजली सबसे महंगी है, जहां टैक्सेशन के लिए मुख्तलिफ इदारे बैठे हैं, 22 डिपार्टमेंट मुंह खोल के रिश्वत खाने के लिए बैठे हैं, उनमें सबसे बड़ा इदारा जो है बदमाश तरीन, उसको एसबीआर के नाम से जाना जाता है, जो लोगों को खुद चोरी चकारी सिखाता है। अब इसके अंदर जो है बिल्कुल फतह मुबीन तो होगी इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन फतह मुबीन के कुछ असूल तय करने पड़ेंगे। फतह मुबीन को से पहले जो है वो उस कसौटी के ऊपर परखना पड़ेगा, फतह मुबीन किन लोगों के हाथों हुई थी, जो है साहिबे इल्मो दानिश थे और तकवा वाले थे लोग, वो किरदार वाले थे, वो अल्लाह ताला के चोजन वन थे। ये आपका क्या ख्याल है, फतेह मुबीन चोरों डाकू लुटेरों और मुल्क दुश्मनों के हाथों की? किसी ने ईंट से ईंट बजाई, किसी ने मेमोगेट स्कैंडल किया, किसी ने डॉन लीक्स की, किसी ने जो है वो जनरल बाजवा को चार्जशीट किया, किसी ने फैज हमीद साहब के ऊपर जो है वो फैसलाबाद में नारे लगवाए, किसी ने जो है वो जाके कश्मीर का सौदा किया, किसी ने जो है वो साइफर का काम किया। फॉर गॉड सेक, वेयर आर वी यू नो हेडिंग फॉर? क्या हमारे पास कोई अच्छा बंदा नहीं है? बिल्कुल है मौजूद, लेकिन बस हम ये सियासत के फंदों में से जब तक के बाहर नहीं निकलेंगे और राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो है वो नहीं करेंगे, बार बार हम पानी निकाल रहे हैं उस कुएं से जिसमें कुत्ता गिर गया, और भाई कुत्ता निकाल लो, पानी जो है वो डोर निकालने से साफ नहीं होगा।
बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी प्यारी बात की। मैं सर जहां से शुरू हुई और मैं आपकी पार्टी के बारे में भी पूछना चाहती हूं, और पाकिस्तान में देर आर किंग मेकर्स, टू बी द किंग यू हैव टू लिसन टू देम, खाकान अब्बासी साहब ने तो इनकार कर दिया। मैं जहां से शुरू किया था वहीं जाना चाहती हूं। शाहजेब मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया था, उसने कहा था कि शाहजेब मर्डर आउटकम ऑफ पर्सनल इगोइस्टिक अप्रोच, यानी जाती अना। मुझे लगता है पाकिस्तान में अना का मसला आपके तमाम लीडर्स के दरमियान और करैक्टर्स जो बड़े करैक्टर्स हैं, किंग मेकर्स हैं, ये वो अना का मसला ज्यादा है। आपकी पार्टी क्या है और आप अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा सा बताइए। इस मुल्क में अगर कोई बड़ा ईमानदार है तो उसको इदारा चलने नहीं देता, आपका ब्यूरोक्रेट नहीं आपको चलने देता, आपके इदारे नहीं चलने देते, और फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको इक्तदार तो मिल जाएगा मगर आपके पास पेन भी होगा मगर उस पेन के ऊपर जो ऑर्डर है वो कहीं और से आएगा, तो फिर उस स्टेज पे आप क्या करेंगे?
सेलिंग द सोल टू द डेवल, इसको ये कहा जाए तो बेहतर है मेरे ख्याल में। देखें, अतायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाह भी होता ही। हमारी पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान जो वेबसाइट पे www.tjp.org.pk उसे तमाम मंशूर अंग्रेजी, उर्दू और पश्तो लैंग्वेज के अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मेहनत कर रहे हैं, हम नौजवान नस्ल के अंदर जो है वो गौरे नायाब तलाश कर रहे हैं और बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनको प्रोजेक्ट करके, उनको काट छांट के, उनको जो है जज्बे हुब्बुल वतनी से, उनको इस्लाम के सुनहरी असूलों से आरस्ता करते हुए, पाकिस्तानियत को सामने रखते हुए उनको एक नए लीडरशिप के किरदार पर ला रहे हैं। ठीक है, कल को वो हमारे साथ रहते हैं नहीं रहते हैं ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन हमारी कोशिश तो ये है ना कि मैं और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम मैं ये कोशिश तो कर रहा हूँ। देखिये, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई पर्सनल गेन, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे वालिद अल हमीद गुल ने मुझे एक जिम्मेदारी लगाई, और इसलिए भी कर रहा हूँ कि जब अल्लाह के हजूर पेश हूँ तो अल्लाह वेल्डन कहे इस मामले पे कि अपने मुल्क के लिए तो काम किया। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हमारी जो तीन बुनियादी बातें हैं, हफाजत, किफालत और अदालत। देखिए, अदालत की बुनियाद के ऊपर जब तक हम इसको एक, मैं बिल्कुल आजाद अदलिया का ख्वाहा हूं और हमारी तहरीक जवानान जो है वो इस बात को मानती है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो एक अकाउंटेबल अदलिया को भी मानती है। वो कहती है कि अदलिया हो लेकिन उसका एहतसाब होना चाहिए।